सॉरी स्वीटहार्ट, पर मैंने तो तुम्हें शराफत से साथ चलने को कहा था, पर आजकल तुम किसी और ही दुनिया में रहने लगी हो, इसलिए मेरी प्यार से कही बातें तुम्हें या तो सुनाई नहीं देती या तुम समझना नहीं चाहती। अब मेरे पास अपनी बात मनवाने का यही तरीका बचा, और अब तुम सीधे वहीं जाकर नीचे उतर सकोगी जहां मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। इसलिए अपनी ये बेकार की कोशिशें करने में बेवजह अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। शान की बात सुनकर आरवी ने उसके सीने पर से शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा, कितने बेशर्म हैं आप, अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती पर उतर आए और ऐसी घटिया हरकत करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि अंशु क्या सोचेगी हमें ऐसे देखकर। शान के चेहरे के भाव अब कुछ बदल से गए। उसने निगाहें उठाकर सख्त निगाहों से उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे मजबूर किया था ऐसा करने पर, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपनी बाहों में उठाए घूमने का। और अगर इतनी ही चिंता थी अंशु की तो शांति से बात सुन ली होती मेरी, इतनी अकड़ दिखाने की क्या जरूरत थी। वैसे भी मैंने बस तुम्हें अपनी बाहों में उठाया ही है, जैसे अंशु को उठाता हूँ। उसके सामने तुम्हें किस या तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर रहा जो मुझे शर्माए, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चुप करके बैठी रहो और मुझे अपना काम करने दो। अगर ज्यादा नाटक किया तो पता तो होगा ही कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए अब कुछ भी करने से पहले ध्यान रखना कि तब मैं सरा भी लिहाज नहीं करूँगा। यहाँ शान ने अपनी बात खत्म की और पीछे से अंशु ने दोनों को देखकर ताली बजाते हुए चहकते हुए कहा, ये डैडा ने मम्मा को अंशु जैसे गोदी में उठा लिया। आरवी, जो शान की बात सुनकर उसको आंखें छोटी छोटी करके गुस्से से घूरे जा रही थी, उसकी आंखें अंशु की बात सुनकर हैरानी से फैल गईं। शर्म से उसके काल गुलाबी हो गए और उसने अपनी असहजता छुपाते हुए अपना चेहरा फेर लिया। शान ने अपनी बेटी की बात सुनी तो सर घुमाकर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आपकी मम्मा के पैरों में चोट लगी है और वो है कि बैड बेबी बनकर आपके डैडा की बात सुन ही नहीं रही, इसलिए डैडा को उन्हें उठाना पड़ा ताकि उनका दर्द जल्दी से ठीक हो जाए। डैडा ने मम्मा को गोदी में उठाया तो आप नाराज तो नहीं हैं? अंशु ने तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया और खिलखिलाते हुए बोली, नो। फिर उसने आरवी को देखकर गंभीरता से कहा, मम्मा बैड बेबी नहीं बनते, डैडा आपका पेन ठीक कर देंगे, आप डैडा की बात मान लीजिए वरना बेबी आपसे नाराज हो जाएगी। अपनी छोटी सी बेटी की धमकी सुनकर आरवी की निगाहें शान के तरफ उठ गईं और उसने चिढ़ते हुए मन ही मन कहा, दोनों बाप बेटी एक ही जैसे हैं, बाप कहता है कि अगर उसकी बात नहीं सुनी तो बेटी के सामने ही बेशर्मी दिखाएगा, और बेटी कहती है कि अगर बाप की बात नहीं मानी तो बात नहीं करेगी, और इन दोनों के बीच मैं फंस गई हूँ। आरवी ने अपनी सोच में गुम हुए ही अतरंगी चेहरा बनाया, जिसे देखकर शान ने भौं उचकाते हुए कहा, सुन लिया अपनी बेटी की बात, अब चुपचाप मेरी बात सुनती रहना, वरना इस बार सजा मैं नहीं मेरी बेटी देगी। आरवी ने उसे देखा, फिर मुंह बनाकर अपना चेहरा फेर लिया। शान के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने अंशु को काम करने को कहा और खुद आरवी को लेकर सोफे के पास आ गया। शान ने बड़े ही ध्यान से आरवी को सोफे पर बिखाया और खुद नीचे घुटने टिकाकर बैठते हुए उसके पैर को आराम से उठाकर उसे टब में रखने लगा, पर आरवी ने तुरंत ही उसको रोक दिया। मेरे पैर बहुत सेंसिटिव हैं, गर्म पानी में रखेंगे तो छाले हो जाएंगे। शान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उसके पैर को पानी में ना रखते हुए उसने उसके पैर को टब के ऊपर ही पकड़कर रखा और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी उसके पैर पर डालते हुए हल्के हाथ से उस जगह की मसाज करने लगा जहां अब सूजन आ गई थी। आरवी एकटक शान को देखने लगी थी। हालांकि उसे दर्द अब भी हो रहा था, पर जितने प्यार और ध्यान से शान उसके पैर की सिकाई कर रहा था, आरवी कुछ पल के लिए अपना दर्द भूल गई थी। शान का तो पूरा ध्यान अपने काम पर था। कुछ देर तक वो उसके पैर को सेकता रहा, फिर जब पानी कुछ ठंडा हो गया तो उसने आरवी के पैर को उसमें डाल दिया और वैसे ही बैठे रहने को कहकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अंदर से टॉवल लेकर बाहर आया, फिर फर्स्ट एड बॉक्स से दवाइयां ली और कबर्ड से गर्म पट्टी निकालने के बाद सब कुछ लेकर आरवी के पास आ गया। शान ने सारा सामान टेबल पर रखा और टॉवल हाथ में लेकर आरवी के पैर को पानी से निकालकर उस पर रख दिया। टब साइड करके उसने अच्छे से आरवी के पैर को टॉवल से पोंछकर ड्राई किया, फिर उस पर ऑइंटमेंट लगाकर गर्म पट्टी बांध दी। इस दौरान आरवी ने एक पल के लिए भी उस पर से अपनी निगाहें नहीं हटाईं। उसको वो पुराने दिन याद आ गए जब शान ऐसे ही उसकी परवाह किया करता था। शान ने उसके पैर को अब नीचे रख दिया और टेबल पर रखी टैबलेट निकालकर उसकी हथेली पर रख दी और पानी का ग्लास उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो खाओ, इससे दर्द आराम हो जाएगा। आरवी ने बिना नानुकुर किए चुपचाप दवाई खा ली। शान ने टब जाकर बाथरूम में रख दिया, टॉवल बालकनी में डालाया और बाकी का सामान उनकी सही जगह पर पहुंचाने के पास आरवी के पास आकर बोला, अब दर्द कुछ कम हुआ? आरवी ने अपना सर हिलाते हुए हामी भर दी। शान ने यह सुनने के बाद गहरी सांस ली और उसको एक बार फिर अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। शान के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे और वो सामने देख रहा था, जबकि आरवी की निगाहें शान के भावहीन चेहरे पर टिकी थी।
शान ने ले जाकर उसको बेड पर अंशु के पास बिठा दिया और उसके पैरों को आराम से उठाकर बेड पर सीधा रखने के बाद पीछे होते हुए बोला, अब यहां से हिलना भी मत, यहीं बैठो अंशु के पास, कहीं जाने की या पैर जमीन पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सख्त लहजे में हिदायत दी और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया तो खिलखिलाने की आवाज कान में पड़ी और अनायास ही उसकी निगाहें आवाज की दिशा में घूम गईं। अंशु की बुक्स वगैरह एक तरफ रखी थी और वो अंशु के साथ खेलने में मग्न थी। दोनों की खिलखिलाती हंसी रूम में गूंज रही थी। शान वहीं खड़ा कुछ पल उन दोनों को निहारता रहा, फिर धीमे कदमों से रूम से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे पहुंचा तो हॉल में अर्पिता जी, सुयश जी और सुभाष जी के साथ छाया बैठी हुई थी। शान को देखकर भी उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया, पर शान ने इस पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया और छाया को देखकर बोला, छाया, आरवी, मेरा और अंशु का खाना मेरे रूम में भिजवा देना। शान की बात सुनकर सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गईं और आंखों में एक ही सवाल था, पर नाराजगी की वजह से कोई उससे कुछ पूछ नहीं सका। छाया ने उसकी बात सुनी तो तुरंत ही हामी भरते हुए बोला, जी भैया। फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा, भैया अब भाभी कैसी हैं? इन दिनों शान जैसे गुस्से में फायर रहता था, छाया भी उससे डरने लगी थी और कुछ नाराजगी भी थी। पर कुछ देर पहले जैसे शान आरवी की फिक्र कर रहा था, उसके लिए गर्म पानी लेने आया था, उसकी नाराजगी कुछ कम हो गई थी। आरवी की चिंता था उसे, इसलिए उसने डरते डरते हुए भी उसे सवाल पूछ ही लिया। शान ने उसके सवाल पर सहजता से जवाब दिया, अब ठीक है। वहां बैठे तीनों लोगों ने उनकी बात सुनकर सवालिया निगाहों से एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ ही अपने कंधे उचकाते हुए शान को देखने लगे। अर्पिता जी ने उसे देखकर चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ है आरवी को, अब क्या किया है आपने उनके साथ? उनके चुप होते ही सुयश जी ने शान को घूरते हुए पूछा। शान की निगाहें सुयश जी की तरफ घूम गईं, जिनके चेहरे पर रोष के भावों भर आए थे। वो कुछ कहने ही वाला था कि इतने में सुभाष जी की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अभी कुछ देर पहले तक तो वो हमारे साथ थी और बिल्कुल ठीक थी, अचानक उन्हें क्या हो गया? क्या फिर से आपने उन्हें तकलीफ पहुंचाई है?
सबकी शक की सुई शान की तरफ घूम गई थी और कहीं ना कहीं शक ठीक भी था, अनजाने में ही सही, पर आरवी को तकलीफ तो उसने ही पहुंचाई थी। शान ने तीनों के चेहरों को देखा, फिर बिना किसी भाव के बोला, उसका पैर मुड़ गया था, आगे आपको जो सोचना है सोच सकते हैं, क्योंकि मैं किसी को सफाई नहीं देने वाला। अपनी बात कहकर शान वापस सीढ़ियों की तरफ घूम गया। उसके तेवर देखकर सुयश जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो शान को कुछ कहने ही वाले थे कि अर्पिता जी ने उनके हाथ पर हाथ रखकर उन्हें कुछ कहने से रोक दिया। सुयश जी ने नाराजगी भरी निगाहों से उन्हें देखा तो उन्होंने आराम से कहा, गुस्सा करने से बात बिगड़ जाएगी, हम जाकर देखकर आते हैं कि क्या हुआ है। सुयश जी गुस्से को पीकर रह गए। अर्पिता जी ने सुभाष जी को भी आश्वस्त किया और उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। शान रूम में आया तो सही, पर वहां ना रुककर बालकनी में चला आया। उसके आने के कुछ देर बाद अर्पिता जी भी वहां आ गईं और सीधे आरवी के पास चली आईं। आरवी बेटा, आप ठीक तो हैं? कुछ कदमों की दूरी से ही उन्होंने सवाल किया, जिसने आरवी के साथ साथ अंशु का ध्यान भी उनकी तरफ खींचा। उन्हें वहां देखकर आरवी कुछ चौंक गई और हैरान परेशान निगाहों से उसे देखते हुए बोली, जी, पर आप यहां कैसे और इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? अर्पिता जी ने उसके तरफ बढ़ते हुए परेशान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, शान ने बताया कि आपका पैर मुड़ गया है तो आपको देखने चले आए। वो अब आरवी के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने उसके गर्म पट्टी बंधे पैर को देखा और चिंता भरे स्वर में बोली, बेटा ये कैसे हुआ? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अगर ज्यादा लगी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हड्डी का मामला है, ऐसे लापरवाही करना ठीक नहीं है। आरवी ने उनके परेशान चेहरे को देखा तो लबों पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, मैं ठीक हूँ बड़ी माँ, आप परेशान मत होइए, अब तो दर्द भी आराम है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और अगर मुझे लगा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। आरवी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर यह इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने एक बार फिर चिंता भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, बेटा आपको ये चोट लगी कैसे? क्या फिर से शान ने कुछ किया है? टू बी कंटिन्यूड। क्या जवाब देगी आरवी, अंदाजा लगाइए। मिलते हैं अगले पार्ट में।